शान नीचे पहुंचा तब भी आरवी किचन में ही थी। किचन से आती खटर पटर की आवाजें ये बता रही थी कि वो काम कर रही थी। शान वहीं सोफे पर बैठ गया और अपने फोन को चलाने लगा। किचन में आरवी जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों हाथों में बाउल लिए बाहर आईं और नज़रें शान पर पड़ते ही उसके लबों पर मुस्कान छा गई। उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा, आप यहीं खाएंगे या डाइनिंग एरिया में चलना पसंद करेंगे? आवाज़ सुनकर शान ने नज़रें उठाईं। एक बार फिर वही मासूम सा चेहरा, खामोश बोलती आंखें और मुस्कुराते लब। जब जब शान उसके चेहरे को देखता था, उसको कुछ अलग एहसास होता था। दिल से आवाज़ आती थी कि इस चेहरे पर ये मासूमियत, आँखों में सच्चाई, कुछ भी धोखा, छल या फरेब नहीं है। शान ने अगले ही पल उस पर से अपनी नज़रें हटा लीं, पर बोला कुछ नहीं। तो आरवी ने बाउल वहीं रखा, फिर प्लेट और बाकी चीज़ें भी ले आईं। उसने शान की प्लेट लगाई और उसकी तरफ सरकाते हुए बोली, जल्दी से खा लीजिए, थक गए होंगे, जल्दी खाएंगे तो जल्दी आराम कर पाएंगे। शान ने अब फिर कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से खाना खाने लगा। आरवी भी उससे कुछ दूरी पर बैठ गई। भूख तो उसे भी लगी थी, तो वो भी खाना खाने लगी। शान खाते हुए बीच बीच में उसे भी देख रहा था। वही उलझन अब भी उसके दिमाग को उलझाए हुए थी कि क्या सच है और क्या सिर्फ नज़रों का धोखा, छलावा। आरवी तो खामोशी से खाने का लुत्फ उठा रही थी। कुछ देर वहां खामोशी पसरी रही, फिर शान ने उसकी तरफ नज़रें घुमाते हुए कहा, कल सुबह 10 बजे स्कूल जाना है, रेडी रहना। उसकी बात सुनकर आरवी का खाना सरक गया, वो जोर जोर से खांसने लगी। शान ने तुरंत अपने सामने मौजूद ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरवी ने ग्लास पकड़ा तो अनजाने में उसकी उंगलियां शान की उंगलियों को छू गईं। दोनों के दिल के तार छिड़ गए और नज़रें एक दूसरे के तरफ उठ गईं। शान ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया तो आरवी ने भी उस पर से नज़रें हटा ली और पानी का ग्लास अपने लबों से लगा लिया। शान सामने देख रहा था, शायद जोरों से धड़कते अपने दिल को संयमित करने की कोशिश कर रहा था। आरवी ने पानी पिया, फिर शान को देखकर बोली, सॉरी, वो गलती से टच हो गया था। इट्स ओके। शान अब भी उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। बहुत सी लड़कियों से मिला था, कितनों ने उसे छूने की कोशिश भी की थी, पर किसी की छुअन में ऐसा जादू नहीं था। ये एहसास कुछ अलग से थे। कैसनोवा छवि थी उसकी सबकी नज़रों में, फिर भी आज तक अपने ज़मीर को ताक पर रखकर किसी लड़की के साथ आगे नहीं बढ़ पाया था। हाँ, थोड़ा फन मस्ती हो जाती थी जब कभी बहुत परेशान होता था तो, पर कभी अपनी लिमिट से आगे नहीं बढ़ा। दिल कभी उस काम को करने को राज़ी ही नहीं हुआ। फिर घर पर अंशु थी, सारी रात बाहर नहीं रह सकता था, देर सवेर घर लौट आता था। अभी अभी जो उसे फील हुआ था वो बहुत अलग सा था। दिल अब तक भी ज़ोरों से धड़क रहा था। हाल तो आरवी का भी कुछ यूं ही था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। कुछ देर वहां खामोशी पसरी रही, फिर आरवी ने ही दोबारा बात शुरू की, मिस्टर मल्होत्रा। शान ने उसकी तरफ एगाह घुमाते हुए कहा। आरवी उसकी कुछ देर पहले कही बात याद करते हुए बोली, आपने कहा कि कल मैं तैयार रहूं। बताया था ना, कल अंशु के एडमिशन के लिए जाना है। मैं जाऊंगी, मतलब आप मुझे भी लेकर जाएंगे? आरवी ने थोड़ी हैरानी से ये सवाल किया। उसका सवाल सुनकर शान ने आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरा और भौंचकाकर बोला, हाँ क्यों, कोई दिक्कत है? तुम ही खुद को अंशु की मम्मा कहती हो ना, तो उसके एडमिशन के वक्त वहां नहीं रहना चाहोगी? या ये नाटक सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ही है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको इतनी बार कहा है, अंशु के लिए मेरा प्यार कोई नाटक नहीं है, मैंने दिल से उसे अपनी बेटी माना है, आरवी ने तुरंत ही जवाब दिया और नाराजगी से उसे देखने लगी। शायद शान यही देखना चाह रहा था। वो खामोशी से एक पल उसको देखने के बाद उठते हुए बोला, एडमिशन के वक्त अंशु की मम्मा और डैडी दोनों का होना जरूरी है। जब तुमने ये जिम्मेदारी उठाई है तो अब पीछे नहीं हट सकती। कल तुम मेरे और अंशु के साथ स्कूल चल रही हो, और याद रखना, अब से उसकी मम्मा तुम ही हो। उम्मीद करता हूँ कि ना तो तुम मेरा भरोसा तोड़ोगी, ना ही मेरी बेटी का दिल, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शान ने लगे हाथ उसको धमकी भी डाल दी। उसकी धमकी सुनकर आरवी ने मुस्कुराकर कहा, बस कह रहे हैं आप, विश्वास तो अभी तक भी नहीं कर पाए हैं आप मुझ पर, अगर कर लिया होता तो ये शक नहीं होता आपके दिमाग में मेरे लिए। खैर छोड़िए, मुझे आपको कुछ साबित करना ही नहीं है, मैं अंशु के लिए यहाँ हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं कल आपके साथ चलूंगी। शान ने हमेशा वाली सख्त आवाज में कहा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो पहले ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद घर आऊंगा, तो खुद भी तैयार रहना और अंशु को भी रेडी रखना, मेरे आते ही हमें निकलना होगा। आरवी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। शान वापस रूम में चला गया। आरवी ने टेबल क्लीन किया, फिर बर्तन लेकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो सब काम खत्म करके रूम में पहुंची तो नजरें बेड की तरफ चली गईं। शान अंशु के पास एकदम स्ट्रेट लेटा हुआ था और आंखें बंद थीं। उसे देखकर आरवी ने धीमी आवाज में कहा, बड़े अजीब आदमी है, ऐसे सो रहे हैं जैसे सो नहीं रहे हैं, परेड कर रहे हैं, एकदम सावधान की मुद्रा में लेटे हुए हैं, हर वक्त ऐसे अकड़े रहते हैं, भगवान जाने इंसान है या रोबोट। आरवी उसके बारे में सोचते हुए कबर्ड के पास पहुंची, अपने कपड़े लेकर जाकर चेंज किया, फिर सोफे की तरफ बढ़ गई और कुछ सोचकर वापस बेड के पास चली आई। उसने अंशु को अच्छे से कवर किया, फिर शान की तरफ आ गई। शान शायद थकान की वजह से गहरी नींद में सो रहा था। आरवी उसके पास खड़ी होकर खामोशी से उसे देखने लगी। इस वक्त उसे किसी बात का डर नहीं था। सोते हुए भी शान एकदम गंभीर लग रहा था। आरवी खामोशी से उसे देखने लगी, फिर थोड़ा सकुचाते हुए अपनी उंगली से उसकी नाक को छूते हुए बोली, इतनी सी नाक पर हमेशा पहाड़ जैसा गुस्सा सवार रखते हैं, थकते नहीं इतना गुस्सा कर करके। इतना अच्छा चेहरा दिया है भगवान ने आपको, फिर क्यों हमेशा इसे सड़ाकर घूमते रहते हैं। कभी मुस्कुरा भी दिया कीजिए, शायद किसी ने पहले कभी आपको बताया नहीं, पर मैं बता रही हूँ, जब आप मुस्कुराते हैं ना तो कमाल लगते हैं। शायद तभी बहुत कम मुस्कुराते हैं, पर आप सोते हुए उससे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि तब आप एकदम खामोश होते हैं। ना अपने शब्दों का तीर छोड़कर मुझे घायल करते हैं, ना ही अपने गुस्से से लाल आंखें दिखाकर मुझे डराते हैं। खैर आप कुछ भी क्यों ना कर लें, पर मैं आपसे डरती नहीं हूँ। शायद आप उतने बुरे हैं नहीं जितना दिखाते हैं। अगर होते तो मेरे लिए खाना खाने नहीं आते। एक्चुअली आप काफी अडोरेबल लगते हैं जब किसी की केयर करते हैं तो, आरवी उसके बारे में बोले जा रही थी। कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है और उसने झट से उस पर से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, कैसी मोहनी है आपके चेहरे में, ना चाहते हुए भी दिल आपकी तरफ खिंच रहा है, पर यह गलत है, मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। उसने खुद को ही समझाया और उसको चादर से अच्छे से ढककर जाके सोफे पर लेट गई। कुछ ही देर में वो भी सो गई। टू बी कंटिन्यूड।